તારીખ 16/5/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 5 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 8
कैसी वो श्याद पद की मुद्रा वाला है, शब्द ब्रह्म, शब्द मैंने, वचन ब्रह्म मैंने, तीन काल में परम सत्य हो जिसमें कोई हेर फेर
नहीं हो
सके उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म मैंने वैसा का वैसा रहने वाला, और श्याद पद की मुद्रा वाला है, श्याद पद मैंने कथनचित वस्तु का स्वरूप को कहता है। जब कहता है एक साथ तो सब पद धर्म कह नहीं सकते, तो उस धर्म की अपेक्षाएं वस्तु ऐसी है, परिणाम की अपेक्षाएं परिणामशील है, नित्य स्वभाव की अपेक्षा से ध्रुव है। ऐसा तो दोनों स्याद है, न एकांत ध्रुव है न एकांत परिणामशील है, विनाशी है। ऐसा रंग का जो परमागम है उसकी उपासना से उसका मैंने मेरा ज्ञान का जन्म हुआ है। मेरा ज्ञान की उत्पत्ति का यही कारण है। श्याद का अर्थ कथनचित है, श्याद के विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण देते हैं, जो हाउस है ब्रैकेट उसमें स्पष्टीकरण देते हैं कि श्याद का अर्थ होता है कथनचित। अर्थात किसी प्रकार से या किसी अपेक्षा से कहना, जैसे एक आदमी को कोई पिताजी कहता है तो वहां बात ऐसी चलती है कि उसका पुत्र का पुत्र की अपेक्षा से बात चलती है। वही आदमी को पुत्र गिन करके कहते हैं तो इनके पिताजी की अपेक्षा से बात चलती है। ऐसे किसी अपेक्षा से कहना, किसी दृष्टिकोण से कहना, ऐसा परमात्मा को शब्द धर्म कहने का कारण यह है। परमात्मा को शब्द ब्रह्म क्यों कहा? शब्द ब्रह्म मूल शब्द पड़ा है तो शब्द ब्रह्म क्यों कहा उसको? कि अनंत के परमात्मा में सामान्य धर्मों के अर्थात वचन गोचर समस्त धर्मों के नाम आते हैं, और वचन गोचर जो विशेष धर्म है उनका अनुमान कराया जाता है, जो जिसका वाणी में नाम ही नहीं हो सकता है, ऐसे भी धर्म है आत्मा का। तो जो वचन गोचर है उसका तो कथन आता है, उसका तो नाम आता है, और जो वचन अगोचर है उसका अनुमान कराया जाता है। ऐसे इस प्रकार से ये वचन अगोचर है, जैसे कि स्वा उद्योग में भी ऐसा है, उद्योग का दृष्टान से समझ सकते हैं कि स्वाद है तो वचन अगोचर है, नाम उसका आता है कि ये मीठा स्वाद है, लेकिन मीठा मैंने कैसा, शक्कर जैसा मीठा मैंने, कोई आम कैरी जैसा मीठा मैंने, अनेक प्रकार का तो मीठापन होता है, किस प्रकार का है, तो ये तो स्वाद है, वचन अगोचर है। ऐसे विशेष धर्म है उनका अनुमान कराया जाता है। इस प्रकार वह धर्म वस्तुओं का प्रकाशक है, इस प्रकार वह धर्म सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है। कौन? शब्द धर्म सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, और इसलिए उसे शब्द धर्म भी कहने में आता है। एक बात, दूसरी बात, समस्त विपक्ष, विपक्ष मैंने क्या, विरोध पक्ष, विरोध पक्ष मैंने क्या, कि अन्य वादियों के द्वारा गृहित जो दूसरे कहने वाले हैं, अन्य वादी मैंने दूसरे कहने वाले हैं, उसके द्वारा गृहित गृहित मैंने कुछ कल्पना करके ग्रहण किया हुआ, सर्वथा एकांत रूप कैसा है अन्य वादियों का कथन, सर्वथा एकांत रूप, कोई सर्वथा तटस्थ कहते हैं, कोई सर्वथा अनित्य कहते हैं, एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ, ऐसा जो उन लोगों का जो अपना अपना पक्ष है उनका निराकरण करने में ये शब्द ब्रह्म है वो समर्थ है, उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि क्यों ये चीज नहीं है, ऐसा भी वो शब्द ब्रह्म बराबर बताता है। अति निष्ठुष निर्बाध युक्ति से अवलंबन है, पति निष्कर्ष मैंने सुनिए उसका निष्कर्ष निकाल करके, उसका पूरा सार निकाल करके, निर्बाध युक्ति से जिसमें कोई बाधा नहीं आ सके, अकाट की दलील जिसको कहते हैं, उसको काट नहीं सके, ऐसी युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है, मेरा निज वैभव का जो जन्म हुआ है, मेरा ज्ञान का जन्म हुआ है, वो तो किस प्रकार से जन्म हुआ है। देखिए इसमें क्या एक बात आ रही कि वस्तु पदार्थ जैसा है सत, वो सत का निरूपण है, और जो पदार्थ को अन्य रूप से असत रूप से कहते हैं उनका निराकरण किया है, उसकी उत्थापना भी कही है, दोनों बात कही है, सही बात का प्रतिपादन किया है और गलत बात का निराकरण भी किया है। ऐसा नहीं कि सही बात हम कह रहे हैं, गलत बात किसकी है वो नहीं बता रहे, ऐसी बात नहीं है। आचार्य होते हुए भी, आचार्य का मतलब क्या है, जो महान विराज है जिसके बहुत विकल्प शांत हो गए हैं इसलिए वो संत है। क्या है? जिसके बहुत विकल्प शांत हो गए हैं इसलिए वह संत है। फिर भी वो अन्य वादियों का असत कथन का निराकरण करते हैं अपने निज वैभव से, उतनी प्रवृत्ति को वो भी करते हैं। अन्यथा सत्य की निर्बाध स्थापना हो ही नहीं सकती। आप ये कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, हम क्या समझे? मैंने ये सत्य है और ये
सत्य है,
सत्य ऐसा कहेंगे आचार्य भी ऐसा कहेंगे, असत्य को असत्य कहेंगे, सत्य को सत्य कहेंगे।
निदान योग क्या? निदान योग क्या?
निदान करने बात नहीं क्या आया? तो आया तो सब असत में स्थापना उत्थापना होना चाहिए। जो सत्य है उसको सत्य रूप से प्रतिपादन करेंगे, जो असत्य है उसको असत्य रूप से प्रतिपादन करेंगे। सत्य दूसरे लोग असत्य कह रहे हैं ऐसा कहेंगे तो उनको तो बुरा लगेगा। क्या
बुरा लगेगा?
ये भाई असत्य बात करता है, ऐसा कहेंगे तो उसको तो बुरा लग जाएगा। तो ऐसा किसी को बुरा लगे ऐसा करना चाहिए क्या कि नहीं करना चाहिए? जनता में तो ये कहेंगे किसी को बुरा लगे ऐसा क्यों करें, पंचायत किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, सज्जन आदमी है, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सज्जनता रखना या असत्य को असत्य कहना, क्या करना?
असत्य को असत्य कहना वो
मजेदार है। असत्य को असत्य के रूप में चलाना
उसकी भावना को ठेस लगेगी तो झगड़ा तो होगा,
लेकिन अपना भी कोई धर्म तो है, अपना भी कोई धर्म तो है। आचार्य महाराज खुद कहते हैं
ठेस तो लगेगी।
ऐसा है कि देखिए इस विषय में कोरणमल जी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है कि अगर हम ऐसा एक सूत्र निकालें कि दारू पीना अच्छा नहीं है, क्या
दारू पीना अच्छा नहीं है,
किसी भी मनुष्य को दारू पीना नहीं चाहिए, तो फिर जो कलाल है, कलाल समझते हैं, दारू बनाने वाला और दारू बेचने वाला, उसको बुरा नहीं लगेगा?
लगेगा।
यही तुम क्या करते हो, हमारी आजीविका पर तुम कुठाराघात करते हो, हमारी आजीविका बंद हो जाएगी, हमारी कमाई को तोड़ते हो, हमारे व्यापार को तोड़ते हो, हमारे धंधे को खराब करते हो, अब करना कि नहीं करना? हाँ, क्या करना? करना कि नहीं करना? क्योंकि दारू पीना खराब है, अच्छा नहीं है, ऐसा कहने से कलाल को अवश्य बुरा लगेगा। तो कलाल को बुरा लगे और उसका कलाल प्रणाम मिट जाए तो अच्छा ही है। इसमें क्या है? ये काम कोई अनुचित नहीं है। इसलिए कोई अनुचित काम करता है, अनुचित प्रतिपादन करता है, दिनेश्वर का सिद्धांत को तोड़ता है, श्री गुरु का सिद्धांत को तोड़ता है, उसको बुरा लगेगा तो वो अपना बुरा काम छोड़ देगा। क्या
तो
अपना बुरा काम
छोड़ देगा? लाइन पे आ गया
तो लाइन पर आ जाएगा, फिर भी नहीं आ रहा तो उनकी जाने, लेकिन वो बुरा काम करता है उसको भी अच्छा हमें लगाना है, ये बात तो सज्जनता की
नहीं है।
सज्जनता का आगमन है, सज्जनता की बात उसमें
निषेध में कड़क शक्ति तो नहीं है, निषेध में कड़क शक्ति तो नहीं होने चाहिए,
करुणा से आना चाहिए, कसाई से
नहीं
आना चाहिए, करुणा से
कड़क शक्ति करुणा से आ गए, कड़क शक्ति करुणा से आ गए।
आ सकता है इसमें आएगा, पशु कहेंगे
पशु कहा है,
एकांतवादियों को क्या कहेंगे?
तो
अमृतचंद्र आचार्य चौदों कलश में पशु शब्द कहते हैं, एक दफे नहीं कहा, दो दफे नहीं कहा, चौदह दफे पशु शब्द कहा है। उसे आचार्य महाराज की कथाएं बढ़ गई होंगी क्या?
नहीं करुणा,
उनको तो तीन कथाएं का अभाव हुआ है, और चौथा जो संजलन कथा है उसका भी मन उदय वर्तता है, तीव्र उदय नहीं वर्तता है, ऐसा है करुणा के वश वो पशु कहेंगे।
सामान्य जन तो उसको करुणा कर सकते, सामान्य जन उसको करुणा कर सकते,
सामान्य जन नहीं समझे तो समझने की कोशिश करें, नहीं समझे तो वचन पुरुष प्रमाण तो वचन प्रमाण करना पड़ेगा कहने, ग्रंथ निराज है ऐसा मानने 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 मान करके तो चला होगा ना, चलना होगा ना, नहीं मान करके चलना होगा क्या बात है। जिनेश्वर देव का कथन है तो विकराग देव है ऐसा मान करके चलना होगा ना, कहने की ये तो जिन प्रवचन में से ये बात आई है, जिन प्रवचन में भी सत्य का स्थापन किया है असत्य का उत्थापन किया है उसी परंपरा से, तो गंधर्व देव ने बारंग की रचना की उसी परंपरा से, आचार्यों शास्त्र लिखे कोई जिन प्रवचन से विरुद्ध शास्त्र तो नहीं लिखे हैं आचार्य ने, मान सकते हैं कि जिन प्रवचन से विरुद्ध लिखा है ऐसा मान सकते हैं क्या? जो भी लिखा है वो जिन प्रवचन के अनुसार लिखा है, इसलिए इनकी वाणी भी जिन वाणी कहने में आई है।
जिन दर्शन में सब दर्शन समाज से गए सब जिन दर्शन में सब दर्शन समाज से गए कई के गए आपने
અનેક નયો છે અનેક ધર્મો બતાવ્યા છે એમાં છ દર્શનો મુખ્ય નીકળ્યા કે જે નયા ભાસ થઈને નીકળ્યા, ક્યાં
નયા ભાસ
સર્વ દર્શન હે વો સત્ય હૈ યા અસત્ય હૈ, सत्य दर्शन है या मिथ्या दर्शन है, क्या है भानु भाई? नया भाष है मिथ्या दर्शन ऐसा नहीं है, वो जिन प्रवचन को ठीक नहीं समझ सके तो थोड़ा आगे पीछे हो गया समझ में, उसमें से अजैन दर्शन है क्या? सरल दर्शन जैन दर्शन है क्या? दर्शन है वो अजैन दर्शन है, ऐसी बात
करेंगे
ऐसा गप्पा गप्पा नहीं चले, पूरा परस्पर्शी अभ्यास करना चाहिए, परस्पर्शी अभ्यास करने से गड़बड़ी हो जाएगी। सर्व दर्शन जीव दर्शन में समाविष्ट है, यथार्थ रूप से छह प्रकार का अभिप्राय कथन चित्र रूप से मान है, और छह प्रकार का अभिप्राय ये छह में एकांत रूप है, एकांत है सब मिथ्या है, ऐसी बात
है। हरेक गाथा जो है जो भी गाथा है शास्त्र में आती है वो तो किसी मत को भी निषेध में और उसके स्थापन में आती है, तो रचना ही नहीं सकती, एक शास्त्र की एक लाइन लिखी नहीं जा सकती, सत्य असत्य का उत्थापन ना हो तो
करना ही
वही गाथा नहीं लिखी जा सकती।
अपना मकान या जमीन का हम डॉक्यूमेंट करते हैं दस्तावेज, तो हम ये कहेंगे कि पूर्व भाग में फलाना फलाना का मकान है, उसकी हद वहां तक है, मेरा जमीन में उसका कोई हक हिस्सा नहीं है, कहीं लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चारों दिशा में जो भी है दूसरे दूसरे उनका कोई हक हिस्सा इसमें नहीं है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा? कोई लगो तो लगो, मेरा चला जाए इसका क्या, इसमें तो क्या सोचता है कि मेरी जमीन या मेरा मकान में कोई कोई दावा नहीं करे अपना हक हिस्से का, इसलिए उसका निषेध में मुझे करना ही पड़ेगा, करते करते कि नहीं करते कि उतनी जमीन मेरी है और अगल बगल वाले जो है उसमें किसी का भी इसमें हक हिस्सा नहीं है, तो अस्ति नास्ति से स्पष्टीकरण नहीं करे तो ये बात पूरी होती नहीं। अनिष्ट कहो या इष्ट कहो जो भी कहो वो करना ही चाहिए, वरना झगड़ा हो जाएगा कि तुम्हारा तुम्हारी जमीन कौन ना पड़ता है लेकिन तुम्हारी और मेरी साथ में है, तुमने मेरा निषेध तो नहीं किया, क्या कहेंगे बगल वाला तुम्हारी जमीन है मैं क्या ना बोलता हूँ, लेकिन मेरी भी है क्योंकि तुमने नाम ही दिया, तुमने इतना ही लिखा कि ये मेरी है, तुम्हारी नहीं है ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा करके वो ले आएगा अपना आगे दावा करेगा। तो वहां तो किसी को क्या लगेगा, पड़ोसी है, अच्छा संबंध रखता है, क्या साक्षी भी इसकी लेगा, क्या करेगा, जरा तुम वीटनेस में साइन कर दो कि ये बराबर मैंने लिखा है, क्या करेगा,
साक्षी लेगा,
आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बात तो सही लिखी है ना, ऐसा कहेंगे। तो सही बात में किसी को बुरा लगे उसमें सही बात कहने वाला दोषी है, निर्दोष है।
मनुष्य की भूमिका में, मनुष्य की भूमिका में आने के लिए प्रयत्न करने वाला जीव उसको भी अपनी भूमिका के अनुकूल इस प्रकार का निश्चय आएगा,
वो सत्य का पक्ष करेगा तो सत्य को प्राप्त करेगा, असत्य का निषेध करेगा तो असत्य से बचेगा, उसको भी नहीं पढ़ा है। लाइन तो मूल में जो शुरू होती है वो ये पहले दूसरी शुरू होती है, फिर उल्टी शुरू होती है, फिर इससे उल्टी शुरू, ऐसा कोई होता है क्या, जो भी है मूल में से एक धारी है, एक सरीखी है।
मनुष्यों को मंडन खंडन में नहीं पढ़ना चाहिए,
मंडन खंडन में नहीं पढ़ना चाहिए, मंडन खंडन काम करता है और सत्य असत्य दोनों जानता है, मुमुक्षु है उसको उद्देश्य ग्रहण करना है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपनी जात के लिए वो करें, मंडन खंडन करना तो उद्देशकों का काम है। तो मनुष्य कोई उद्देशक है क्या, नहीं है। तो ठीक है, प्रश्न अच्छा है कि मंडन खंडन नहीं करना इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि सत्य असत्य को नहीं जानना, क्या क्या अपने हित के लिए सत्य असत्य को जाने, लेकिन प्रचार प्रसार उपदेश का काम तो मुमुक्षु का भूमिका में नहीं आता है, क्या ये आचार्य और कई ज्ञानियों की काम का काम है, तो उसको तो दोष नहीं आएगा। ज्ञानी मंडन खंडन करेगा तो वह निर्दोष रह जाएंगे, लेकिन तो उपदेश दे रहे तो वो उनके लिए अपनी भूमिका से थोड़ा बाहर जाने की बात नहीं आती। तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा तो जानता नहीं है, मुमुक्षु है वो तो जिज्ञासु है, तो जिज्ञासु की भूमिका में पूरा अनुभव अनुभव ज्ञान से पूरा ज्ञान नहीं होने से उनको उस जो रेखा है उसका उल्लंघन करके आगे नहीं जाना चाहिए। सत्य असत्य जानना, जानने में जिज्ञासु रहना और अपने हित के लिए वो जान करके उसकी मर्यादा में रह जाना, तो उसको जो मंडन खंडन में होने वाला जो दोष है वो नहीं होगा। ये थोड़ा मुमुक्षुओं को बचाने के लिए सूक्ष्म विषय है, थोड़ा पूछे तो बताओ बराबर अपना अभिप्राय। मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्या मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं आगम से मेरे श्री गुरु की कृपा से ऐसा समझा, लेकिन मंडन खंडन करना ये मेरे अब की ज्ञान का काम है, गुरुओं का काम है, मेरा काम प्रवृत्ति है। मंडन खंडन एक बाह्य प्रवृत्ति है और सत्य असत्य समझना एक भीतर की मुमुक्षु की अपनी समझ की प्रवृत्ति है, अंतरंग प्रवृत्ति है, दोनों में फर्क है। तो बाह्य प्रवृत्ति करने का अधिकार नहीं है, तो अनधिकृत रूप से अगर वो करने को जाता है तो उसको नुकसान खड़ा हो जाता है, ये बात है। अपनी योग्यता से आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसी बात है क्या। एक समझ को ठीक करना एक बात है, एक मैं सच्चा हूं तुम झूठा है ऐसा करके प्रवृत्ति करना ये दूसरी बात है। तो जिसको परम सत्य की उपलब्धि हो उनको तो कुछ अधिकार मिलता है, ज्ञानी है, मुनि है, उसको तो कोई अधिकार मिलता है क्योंकि उसके हाथ में परम सत्य है, उसके कब्जे में सत्य स्वरूप है। और ये तो जिज्ञासु है, ऐसी बात है। तो उसको तो अपनी समझ ठीक करनी है और अपनी समझ में रहना है। ठीक है, ये ठीक लगता है, ये सत्य लगता है, ये असत्य लगता है, ये तो मेरी तो ऐसी बात है, मैं तो मेरी समझ को ठीक करना मैं पड़ा हूँ। जब मैं आगे बढ़ूंगा दूसरी बात है, अभी तो मुझे मेरी मर्यादा यहाँ पर ऐसा। ये बात ठीक है, थोड़ा प्रयोजन है मुमुक्षु के लिए, वो बात का थोड़ा
प्रयोजन
प्रयोजन है। वो मन खंडन में जो पड़ जाता है तो तकलीफ अपने आप को हो जाती है, उसमें थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो फिर इनके बर्बादी का सज्जन को विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, क्रॉस आर्ग्यूमेंट दूसरा विचार हुआ है कि ये जो विषय है मंडन खंडन वाला विषय है वो क्या कह रहा है। जैसे हम कहेंगे कि दिगंबर सत्य है, क्या कहेंगे हम?
दिगंबर सत्य है, दिगंबर सत्य है।
और दिगंबर में भी क्या संप्रदाय बुद्धि ठीक है क्या? तो दिगंबर होते हुए भी संप्रदाय बुद्धि नहीं होनी तो ज्ञानी के सिवा कैसे उसको समझ में ठीक होगी? मुमुक्षु के समझ में ये बात कहां से आएगी? जब कोई ज्ञानी अन्य मति मार्गानुसारे उसको अन्यमति को मार्गानुसारे कहेंगे तो ये मंडन खंडन वाला तो ज्ञानी को उड़ाएगा, क्या करेगा उस वक्त? उनकी तो संप्रदाय बुद्धि होगी, उसकी तो संप्रदाय बुद्धि होगी। बात निकली है तो स्पष्ट करें कि अन्य मत का जो साधु है वो कुलिंग है कि सही लिंग है, जिन लिंग है? जिन लिंग तो नहीं है लेकिन दिगंबर जिन लिंग है, और तो कुलिंग है, तो उसमें धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कुलिंग में धर्म प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अब मंडन खंडन में पढ़ने वाला क्या करेगा? निषेध करेगा। करेगा कि निषेध नहीं करेगा? निषेध करेगा कि उनका नहीं अनुमति है, हो ही नहीं सकता। क्या करेगा वो? क्योंकि वो संप्रदाय बुद्धि में आ जाता है। ज्ञानी मंडन खंडन करते हुए भी संप्रदाय बुद्धि में नहीं होते कभी, और मुमुक्षु को संप्रदाय बुद्धि तीव्र हो जाती है। तो वो सत्य को सत्य ग्रहण करने के मैं तो रहता नहीं है, मंडन खंडन में पढ़ने में एक दूसरा दूसरा दूषण है उसको ग्रहण कर लेते हैं, उससे उसको बचाने के लिए बात किया। ये बात है इसमें कि जितनी ज्ञानी को विशाल दृष्टि होती है तत्व ग्रहण करने की, उसकी विशालता अभी मुमुक्षु की भूमिका में उसको आई नहीं और वो मंडन खंडन में पड़ जाता है, तो उसको संप्रदाय बुद्धि तीव्र हो जाने से वो एक नया गणित मिथ्यात्व को ग्रहण कर लेता
है। पर उसमें रह गए धर्मात्मा का निषेध होने से त्रिकालवर्ती धर्मात्मा
को त्रिकालवर्ती धर्मात्मा का निषेध हो जाएगा। फिर एक धर्मात्मा का निषेध होने से त्रिकालवर्ती धर्मात्मा का निषेध हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा।
पक्षा पक्षी क्या नहीं परमेश्वर, पक्षा पक्षी क्या नहीं परमेश्वर?
हाँ, पक्षा पक्ष में एक बात है, सत्य नो पक्ष है, असत्य विपक्ष में छाए तो विपक्ष संग है प्रसन्न क्या?
विपक्ष
समस्त विपक्ष क्या?
समस्त
विपक्ष अन्यवादियों के द्वारा ग्रहित सर्वथ एकांत रूप नए पक्ष कहे निराकरण में समर्थ अस्ति निस्तु निर्बाधित से अवलंबन से उस निज वैभव का, मेरा निज वैभव का जन्म हुआ है। ये पक्ष और विपक्ष था कुछ गहराई से समझ इस बात का पता नहीं चले। खुद नहीं पड़ेगा तो क्या करें। देखिए मैं तो मेरे गुरु से या सत्संग से इतना समझा क्योंकि मेरी भूमिका जो है कुछ मर्यादित है। अगर आपको ठीक समझना हो तो मैं मंडल खंडन की चर्चा नहीं करूँगा। चलिए आप सत्संग के पास क्या करेंगे आप चलिए उनके पास आपको बिल्कुल बात समझने को मिलेगी। तो सत्पुरुष तो इतने ऊपर रहते हैं कि वो सामने वाले के चारों तरफ से भूमिका को समझ लेते हैं, फिर उसको किस मर्यादा में कितनी बात करना वो समझते हैं। मुसू करने जाएगा तो वो उसको सीधा ही मिथ्या दृष्टि ठहराएगा, और ज्ञानी वो मिथ्या दृष्टि होते हुए भी उसको ऐसे टैकल करेंगे, उसको ऐसे ट्रीटमेंट देंगे कि वो भग नहीं जावे, वो पढ़ नहीं जावे, उसको उसका स्थितिकरण करेंगे। क्या ये जो कला है वो ज्ञानी के पास है, मुमुक्षु के पास वो कला नहीं है। तो सामने वाले का स्थितिकरण करेंगे, चाहे बौद्ध में से आया हो, विष्णु में से आया हो, मुसलमान में से आया हो, क्रिश्चियन में से आया हो, जैन हो, अजैन हो, जैन का किसी भी फिरका का हो, तारकवासी हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, कुछ भी हो, इनकी जो दृष्टि की विशालता है वो सामने वाले को अगले को महसूस होती है कि ये विशाल दृष्टि वाला है, संकुचित दृष्टि वाला नहीं है। तो खड़ा रहता है और मंडन खंडन करने वाला मुमुक्षु है, उसकी संकुचित दृष्टि इस अगले को समझ में आती है तो उसको घृणा होती है, संकुचित दृष्टि वाला बात समझ जाएगा तो सामने सामने वाले को नुकसान हो जाएगा। सत्य बात कहते हुए भी उनको नुकसान नहीं। अपनी समझ को बतावे, मैं ऐसा समझाऊं मुझे भी सत्य लगता है। आप विचार करिए, पूछिए क्या ये न्यायुक्त है या अन्यायुक्त है, तो न्यायुक्त मुझे बता दीजिए, मैं भी मेरी समझ को ठीक करूं। तो उनको ये बात लगे कि आज तुम मध्यस्थ है, वो इतना मध्यस्थ है तो अपनों को गुरु के स्थान में स्थाप करके मुझे उपदेश नहीं देता है, तो उसका जो इंप्रेशन है वो भी अच्छी होगी, मध्यस्थता की इंप्रेशन लगेगी। जैसे कृपालु देव थे वो गृहस्थ अवस्था में थे, उसको ज्ञानी गुरु दुनिया तो स्वीकारने वाली नहीं है, वो तो समझ गए मणि है, व्यापारी है, गृहस्थी है, तो परिवार वाला है, तो उसको तो त्यागी नहीं है, तो गुरु के भेष में भी नहीं है वो, तो वचन मध्यस्थता का रखा, वचन प्रयोग उसका देखो हम देखे कितनी मध्यस्थता आती है, मुमुक्षु नहीं है, ज्ञानी है, फिर भी कि वो जानते हैं उस बात कि मेरी बाह्य परिस्थिति क्या है, मेरी अंतरंग परिस्थिति क्या है, सामने वाला कहाँ खड़ा है, उसको तो ऊपर उठाना है, ऊपर आवे वही ठीक है, को भग करके चला जावे वो ठीक नहीं है, वो कला उनके पास है। तो उनके वचन में मध्यस्थता बहुत दिखेगी। अब इनके वचन की मध्यस्थता हम नहीं देखे और हम ये उनका दूषण देखे कि देखो उन्होंने तो सत्य असत्य का स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तो गलत बात किया है, उसको समझने में तुमको बहुत देर लगेगी, उनको समझने में भी तुझे बहुत देर लगेगी। इतनी आसान बात नहीं है कि सत्पुरुष का समझ अपना स्वरूप ऐसा समझा जाए, पहचाना जाए, ऐसी बात मामूली बात है नहीं।
प्राय शब्द का प्रयोग करके प्राय शब्द का प्रयोग
मध्यस्थता और मध्यस्थता दिखाई, लोग कहते हैं वो ढीली ढीली बात करते हैं, ढीली ढीली बात करते हैं, बात तो जो कहते हैं वो सही कहते हैं, जैसे अपनी भावना आई तो उसमें क्या रखा कसर रखी, अपूर्व अवसर में कौन सी कसर रखी, ऐसी मध्यस्थता नहीं थी कि हर जगह वो माथा न माने को जाते थे क्या
नहीं।
क्या इनके समकाल में दिगंबर आचार्य और श्वेतांबर आचार्य और मुनिसंघ नहीं थे क्या, दोनों संप्रदाय थे क्यों किसी के पास मंदिर नमस्कार को नहीं जाते थे, खाते थे क्या?
नहीं।
इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन खुद ग्रस्त हुए इसमें थे, उपदेशक होकर के वो प्रतिपादन उपदेशक के स्थान में बैठ करके बात नहीं करते थे, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इस देश में लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उनको तो बहुत सारा और की इतनी विचक्षणता होती है, तो परिणाम तो जो भी देश काल अनुसार समाज पर आने वाला है वो आता है, वो कुदरती व्यवस्था है, इसमें कोई कुछ कर सकते नहीं है। क्या महावीर भगवान ने वो चाहा था कि मेरे चले जाने के बाद जिन शासन इतना दरिद्र हो जाए?
नहीं।
वो चाहते थे क्या?
नहीं।
कि मैं जब सिद्धालय में पहुंच जाऊं बाद में ये सब बात चौपट हो जाए? तो क्या उन्होंने ग्रंथ की व्यवस्था नहीं बिठाई? ये कुदरती व्यवस्था है, तीर्थंकर भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। देश काल अनुसार समाज की परिस्थिति होने वाली होगी होगी और होगी।
मुनिपणा ने
भावना भावे छे, निषेध क्या थी? चौबीस वर्ष ने उम्र थी मुनिपणा ने, पच्चीस वर्ष ने उम्र थी निर्ग्रंथ थवानी तो भावना भावे छे, निषेध नो प्रश्न क्या छे? लेकिन सच्चे मुनि उन्होंने देखे नहीं, ये बात है। जो छठा सातवां गुणस्थान वर्ती मुनि होना चाहिए, जिन जिनोक्त भावलिंग और द्रवलिंग भी जिनोक्त होना चाहिए, भावलिंग भी जिनोक्त हो, निश्चय व्यवहार दोनों जिनोक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं देखा। लेकिन खुद ग्रस्त थे इसलिए उन्होंने उपदेश नहीं दिया, लेकिन वो कहीं गए नहीं, अपने घर में बैठे रहे। अगर किसी ने पूछा क्या इनका उपदेश सुने, तो बोल दिया अपना अभिप्राय क्या दिया, आधुनिक मुनियों का सूत्र श्रवण करने योग्य भी नहीं है। क्या बोले? क्या बोले? आधुनिक मुनियों का सूत्रार्थ श्रवण करने योग्य भी नहीं है। आता है कि नहीं आता है? उसमें ऐसा नहीं बोला, ये मैं नहीं बोलूंगा उनको बुरा लग जाएगा, ऐसा कहा क्या? वो जानते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो
जानते हैं।
मूर्ख लोगों को तो भूल हो जाती है, इसलिए उसे मर्यादा माने ना।
नए आदमी के साथ में तो मनुष्य को, नए आदमी के साथ में तो मनुष्य मिलन खंड में रहते हैं, लेकिन जो आपस में रोज बैठने वाले लोग हैं उन्हें कोई ऐसी बात चल जाए तो उसके बीच में
उपदेशक क्यों बने? दूसरा मुमुक्षु का भी एक मुमुक्षु उपदेशक क्यों बने? ये जो अपनी रेखा है, मर्यादा की रेखा है, उसका उल्लंघन है उसमें, तो उसमें दोष संभवित है और सामने वाला को मंजूर नहीं होगा, फिर एक बलात्कार करने की बात हो जाएगी कि मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है कि ये भी मामूली समझदार आदमी है, क्यों इतना थोपता है अपनी बात को, अपनी मान्यता को, अपनी बात को दूसरे पर जबरन थोप देना, ये तो किसी हालत में भी कर्तव्य नहीं है और ज्ञानी तो करते भी नहीं। तो मुमुक्षु तो वो करने लग जाएगा, क्या करेगा? वो करने लग जाएगा, ये प्रवृत्ति अनुचित है, उचित बात है।
कोई सत्पुरुष का उत्थापन कर रहे हैं, कोई जीव सत्पुरुष का उत्थापन करता है, ऐसे जीव को कोई मुमुक्षु कटु वचन बोलता है तो ये खंडन मंडन हुआ?
नहीं, खंडन मंडन नहीं, वो खंडन मंडन नहीं है, वो क्या खंडन मंडन है, ये मत का खंडन मंडन थोड़ा है, ये खंडन मंडन नहीं है। वो तो इधर से चला, अन्यवादियों का निराकरण करते हैं श्री गुरु, और इससे भी उसका जन्म हुआ है, जन्म होने में दो पड़खावों भी है, और निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न अंतरलीन परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधर आदि, इससे लेकर हमारे गुरु पर्यंत, हमारे जो आचार्य थे गुरु पर्यंत, उनके प्रसाद रूप से दिया गया है, दिया गया जो शुद्ध आत्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है उससे मेरा निज वैभव का जन्म हुआ है, एक वचन में तो कितनी कितनी बात डालने लगे, देखिए एक वचन में कितनी बात डालने लगे। क्या कहते हैं कि मेरा जो निज वैभव है उसमें निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ देव का अनुसरण किया मैंने इतना नहीं लिया। सर्वज्ञ देव कैसे थे कि जो निर्मल विज्ञान घन अपने आत्मा में पूरे पूरे डूबे हुए थे, किंचित मात्र भी इनका उपयोग बाहर निकलता नहीं था। भगवान ने कभी जैसे हम बातचीत करते हैं ऐसी बातचीत नहीं किया, जैसे कहते हैं हे गौतम तो ऐसा करना, ऐसे भगवान कभी बात करते नहीं थे। क्या उपयोग बाहर जाता है, ऐसी बात कभी होती
नहीं।
जैसे व्यक्तिगत बात छदमस्त जीवों में होती है ऐसी बातचीत सर्वज्ञ और छदमस्त के बीच में कभी होती
नहीं
है। वो अंतर निमग्न रहते हैं पूरे के पूरे अपने विज्ञान घन निर्मल आत्मा में पूरे पूरे स्थिर रहते हैं, वाणी वाणी के कारण छूटती है, ओंकार दिव्य ध्वनि छूटती है, वो वचन वो भाषा जैसे अपन शब्द शब्द बोलते हैं ऐसा शब्द उसमें आता
नहीं,
नहीं है। क ख ग घ ऐसा नहीं आता है, ऐसा कोई अक्षर नहीं आता है, उसको अनक्षरी वाणी कहने में आई है। ओंकार ध्वनि अनक्षरी वाणी है, अक्षरी वाणी नहीं होती, और उसमें सभी भाषाओं के का सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। कितने 1400 लघु भाषा और 700 महाभाषा क्या लिखा है, सब भाषा उसमें आ जाती है। ऐसा लगता है अतिशय वाणी, सबको ऐसा लगता है कि मेरी भाषा में भगवान मुझे ऐसा कहते हैं, स्पष्ट ऐसा कहता है, गोल गोल कहता है ऐसी बात नहीं है, स्पष्ट मुझे
ऐसा कहते हैं
भगवान, ऐसा उनको लगता है। भगवान तो अपने निर्मल विज्ञान घन आत्मा में डूबे हुए हैं, स्वरूपे डूबीला नमन तुझने ओ जिनवरा, सबो शरण में भगवान कैसे हैं, स्वरूपे डूबीला नमन तुझने ओ जिनवरा, स्वरूप में डूबेला छे, वातावरण में जे वाणी छे એમના અસ્તિત્વના નિમિત્તે છૂટે છે, માટે ભગવાનની વાણી કહેવામાં આવે છે। એમની હયાતી ન હોય તો એ વાણી ત્યાં ઉત્પન્ન થાય
નહીં,
વાણી શબ્દથી ઉત્પન્ન થઈ છે, જિનેશ્વર દેવથી ઉત્પન્ન થઈ, કેમ કે જિનેન્દ્ર દેવ ચૈતન્ય છે, વાણી જળ હે, જિનેન્દ્ર દેવ જળ ચૈતન્ય ભિન્ન ભિન્ન હૈ, ભગવાન વાણી કે કરતા હતા स्वतः उत्पन्न होती है दिव्य ध्वनि, स्वतः बंद हो जाती है, बंद करने का भी विकल्प नहीं, बोलने का भी
विकल्प नहीं।
एक दिन में चार दफे 6-6-24 प्रहर में 6 प्रहर के बाद वो चालू हो जाती है, कभी भी बंद हो जाती है। भगवान उस पर ध्यान देते हैं,
डूबेला है,
स्वरूप में डूबे हुए हैं। ऐसे सर्वज्ञ देव और अपर गुरु, उसके नीचे वाला गुरु, ये परम गुरु और ये
अपर गुरु,
अपर गुरु परम नहीं है, परम सबसे नीचे दूसरे स्टेज वाले कौन है, गणधर आदि आचार्य, गणधर भी आचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, और भी आचार्य होते हैं अधिक में ले लेना, और इससे परंपरा लेकर हमारे गुरु पर्यंत, क्या कहा अमृतचंद्राचार्य देव ने, 15 साल हुई थी भगवान को मोक्ष जाने के पीछे, अमृतचंद्राचार्य हुए 15 साल में जितने भी गुरु परंपरा हुई, हमारे गुरु पर्यंत जितने भी गुरु थे उनके प्रसाद रूप से दिया गया। क्या मेरे पास तो इनकी प्रसादी है, भगवान की, जिनेन्द्र देव की और गणधर आदि मेरे जो गुरु हैं इनकी प्रसादी मेरे पास पूरी है, मेरे निज वैभव में तो उनकी प्रसादी सैंपल उसी जाति का है, वही चीज है मेरे पास।
1500 साल पूर्व जितने आचार्य भगवान हुए उनका सब उन्होंने
नाप निकाल दिया, अपने निर्मल शुद्ध ज्ञान में सबों का नाप निकाल दिया। उनके प्रसाद रूप से देखो बहुमान किया, प्रसाद करके क्या कहा,
बहुमान,
बहुमान किया कि इनका उपदेश का मैं बहुमान करता हूँ, इनके पास तो बहुत था मुझे थोड़ी प्रसादी
मिली।
उन्होंने दी है। कैसे दी है? अनुग्रह करके दिया है, मेरे पर कृपा कर ली उन्होंने, मैं इसकी कृपा का भाजन हूं, ऐसा कहते हैं। प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्ध आत्म तत्व का उपदेश, शुद्ध क्या दिया, इधर स्वर्ग में वो बात है, उधर ये आठवें खंड में वो बात है, पहले खंड में जम्बू द्वीप में वो है, वो बात नहीं लिया, शुद्ध आत्म तत्व का उपदेश दिया है। सारे 12 अंग का केंद्र स्थान कौन है?
शुद्धात्म तत्व,
एक शुद्धात्म तत्व है, उसका उपदेश मुझे मिला है। कैसे मिला है? अनुग्रह पूर्वक, अनुग्रह मैंने मेहरबानी, मेरे पर उनकी मेहरबानी हुई, मेरे पर उनकी कृपा हुई। कितना विनय किया है, आचार्य होते हुए भी बहुत समर्थ आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य मैंने बहुत समर्थ आचार्य, आपके इनके प्रवचन ये संस्कृत कॉलेज में एमए में पढ़ाया जाता है, अमृतचंद्र आचार्य जंगल में लिखा, उनका शास्त्र संस्कृत हायर लैंग्वेज है, प्रवचन साहब में हायर संस्कृत है, दूसरे शास्त्र में इतना हार्ड नहीं है लैंग्वेज, बहुत हार्ड लैंग्वेज। तो आज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में उसका प्रवचन सार रखते हैं, उतना विद्वत्ता, उतना विद्वत्ता भी उतनी, गंभीरता भी उतनी, अनुभव भी उतना। कहते हैं कि मैं तो मेरा गुरु की कृपा से मुझे कुछ मिला है, क्या गुरु कृपा से मुझे कुछ मिला है, मेरा क्षोक्षम है, मैं जानता हूँ, मुझे बहुत मेरा क्षोक्षम बहुत तगड़ा है, ये बात नहीं, इनकी कृपा हुई तो कुछ मिला है मुझे भी। अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश, उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। गुरु की कृपा से मेरी समृद्धि है, मेरे में गुण समृद्धि है, ये तो मेरे गुरु की कृपा है, ये नहीं तो ऐसा ही किया जाता है। इसलिए पर्याय का अहमपना अभिमान पैदा होता नहीं है, जानते हैं सब कितना पुरुषार्थ चलता है, कैसे कैसे निर्मलता होती है, सब अनुभव में है। जब व्यवहार में तो व्यवहार से बात चलती है, व्यवहार में तो व्यवहार से ही बात चलती है। निज वैभव का जन्म हुआ है, निरंतर जलता हुआ, क्या आप कहते हैं, हमें अपनी खुद की बात करता है कि निरंतर जलता है, क्या आनंद प्रचुर संवेदन, जैसे कोई पर्वत में से 115 डिग्री का तड़का होवे, धूप होवे, गर्मी, लेकिन पर्वत में से कोई झरना झरता है, ठंडा निर्मल पानी होता है, ऐसा होता है,
ठंडा निर्मल,
सारा पहाड़ है वो गर्म गर्म लगता है, पहाड़ी तो इतनी गर्म होती है कि आसपास से कुछ 5-10 मील में, 10-20 किलोमीटर में उसकी गर्मी का अनुभव होवे, लेकिन झरना निकले अंदर में से तो ठंडा पानी निकलता है, जैसा आइस वाटर हो ऐसा लगे, क्या कुदरत है, देखो कुदरत कैसी है। ऐसा मेरे शुद्धात्मा रूपी पर्वत में से निरंतर जलता हुआ और स्वाद में अनुभव में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, निर्मल आनंद है, अकषाय आनंद है, पंचेंद्रियों का विषयों में सकषाय आनंद आता है, वो बात इधर
नहीं है,
नहीं निर्मल आनंद है, अकषाय भाव, कषाय का जिसमें अभाव है, ऐसा जो सुंदर आनंद है उसकी मुद्रा से, उसकी मोहर छाप लगी है, मुद्रा मैंने क्या, मोहर छाप लगी है, गवर्नमेंट की मोहर आती है ना, गवर्नमेंट के जो पेपर होते हैं उस पर गवर्नमेंट की मोहर आती है, ये अपनी ये तीन सींक आता है ना, ऐसे मेरा परिणमन में एक मोहर लगी है, क्या मेरा जो परिणमन बहता है हर वक्त हर समय, जो परिणमन चलता है उसमें एक मोहर लगी हुई है, किसकी मोहर लगी है, कि निर्मल आनंद की मोहर लगी हुई है। आप जब अन्य मतियों को निषेध करते हैं, निराकरण करते हैं, तब भी क्या आपने समय सार में एकांतवादियों को पशु कहा तब तो कि तब भी मेरे परिणाम में तो सुंदर आनंद का झरना झरता है। ये बात है, मोर कम जावे,
मोर तो मोर ही,
मोर तो मोर लगी हुई रह जाती है।
परिणति लब्ध लेना है हमेशा।
हाँ, लब्ध परिणति, आनंद गुण की परिणति निरंतर चलती है,
चलती है।
हाँ। और वो परिणति कोई छिपी हुई बात
नहीं है,
नहीं है।
वाह,
ये परिणति कोई छोटी बात नहीं है, कोई पतली लकीर नहीं है। क्या नजर नहीं आवे, पतली लकीर होवे तो नजर नहीं आवे, पतली लिट्टी कैसे ना। ये परिणति है, उसमें अनंत गुण का दोध बहता है। क्या अनंत गुण का दोध बहता है? ऐसी बात है कि जिसके आवाज में दूसरा कुछ मुनियों को सुनाई देता
नहीं है, नहीं देता,
सारे जगत का कोलाहल सुनाई नहीं देता, ऐसा दोध पड़ता है आनंद का, पतली लकीर नहीं है वो। ऐसी बात है, परिणति मैंने कुछ छिपी हुई बात होगी, ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं
है। वहां तो परिणति वो चीज है मुनि दशा में कि बाहर जाने वाला उपयोग कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, उपयोग का कोई नहीं चलता, बाहर जाने वाला उपयोग का चलता ही नहीं है। देखिए परिणाम में उपयोग और लब्ध, ज्ञान में उपयोग और लब्ध है, और परिणति में तो आनंद गुण है साथ, लब्ध के साथ दूसरे
गुण
है। वक्र किसका है? वक्र कहते हैं ना, दस आदमी में एक का चलता है घर में, क्या होता है 15-20 आदमी का एक परिवार हो, उसमें एक आदमी का चले किसी का नहीं चले तो क्या बोलते हैं?
तो वक्र चलता है
कि भाई हमारे घर में तो इसका वक्र है, वो जेठानी बोलेगा वो चलेगा, दूसरे का किसी का चलेगा या सास बोलेगा उसका चलेगा, बात खत्म। वक्कर इसका है, ऐसे परिणति का वक्कर है, परिणमन में क्या है, परिणति का वक्कर होता है, इसका चलता है, उपयोग का नहीं चलता है, वहां उपयोग बेकार जाता है।
लब्ध और परिणति तो ज्ञान के लिए, आनंद का वेतन जो उसका है, आनंद का जो अनुभव है बिल्कुल उसका चालू ही है।
हाँ, वो परिणति के साथ है, उपयोग के साथ नहीं है। उपयोग बाहर जाता है उतनी आकुलता है, वहाँ आनंद नहीं है, उपयोग के साथ तो आनंद नहीं है। वो आता है ना गर्भ दृष्टि प्रकाश में कि भेद वाला ज्ञान से आकुलता अभेद है। क्या भेद वाला ज्ञान के साथ तो आकुलता अभेद है, और मेरे साथ तो निराकुलता अभेद है, क्योंकि वो परिणति है, मेरे परिणति मेरे साथ छिपकी हुई है, उसमें कोई भेद तो अभेद ज्ञान में है, निराकुलता अभेद है, और भेद वाला ज्ञान में आकुलता है। शास्त्र ज्ञान होगा तो भी आकुलता है। कोई पता ही नहीं है, बिछू करड़ता है, उसकी वेदना का पता चलते ही भीतर में चले जाते हैं, फिर वेदना का पता लगता नहीं है कि है कि नहीं है। ऐसी बातें हैं, दूसरे को मामूली आदमी को ऐसा बिछू कर ले तो जैसे आग लगी हो सारे शरीर में, ऐसी वेदना हो है। क्या पॉइजन ऐसा है बिछू का कि जैसे सारे शरीर में आग लगी हो ना, ऐसी वेदना हो है। और मुनिराज को अंदर से शांति का फुहारा छूटता है तो वेदना को जैसे देखते ही नहीं, भीतर में चलेगा, वेदना वेदना में रह गई, मैं अपने आप में
अनुभव करूं छू कि तरस लागे छे, भूख लागे छे, एनु भूख बिल्कुल तरस लागे छे, भूख लागे छे, एनु वेदना भूख बिल्कुल
ना, तो
ना महसूस करूं छू।
सारी बात छे, कोना आधार है आ सवाल छे, कोना आधार है ये सवाल छे।
એક
માણસ દેશ માટે લડતો લડતો પ્રાણ આપે છે, ક્યાં દેશ માટે લડતો લડતો પ્રાણ આપે છે તો એનું મસ્તક કપાઈ જાય છે અને ધડ લડે છે. તો એ જ્ઞાની મુનિ કેવા કે નહીં એને? હે, એટલે વિતરાગી મુનિ કેવા કે ન કેવા? કે એના પરિણામ નું અવલંબન દેશ છે, આત્મા નથી. ભલે એને દેહાત્મ બુદ્ધિ હોવા છતાં દેહ ની દરકાર ન કરી, પણ એ દેહ ની દરકાર કોના આધારે ન કરી? કે દેશભક્તિ ના આધારે કરી. આત્મભક્તિ એમાં છે, અવલંબન ક્યાં? એવું વાત હે, કેસા આદમી હમને દેખા હે. અગ્નિ દેવું ને, અગ્નિ કોલસા, જલા હુઆ કોલસા, મુઠ્ઠી પર પકડ કે રખે, નહીં છોડે. બોલો, કહાં તક પકડના હે? મેં પકડ કે રખતા. સહન શક્તિ હોતી હૈ, કિસકે આધાર સે? આત્મા એક સાય સ્વભાવી આનંદ મૂર્તિ કે અવલંબન સે? યા મેં એસા કર સકતા હું, મેં ઇતના બહાદુર હું, એસી માન્યતા કે આધાર સે? મેં એસા સુરવીર, અવલંબન કોણ સા હૈ? उस परिणाम का मूल्यांकन होता है, सिर्फ बाहरी परिणाम देखा नहीं जाता. थोड़ी गहरी बात है.
સમર્થ ની દીધી નિમિત્તે 174 રૂપિયા મંદિર પૂજા આરતી વિગેરે 174.